जय श्री साई राम। साई वचनामृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
समाओ साईं बाबा तेरे परती में भक्ति के भर जा बुलाओ साई बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा परति बुलाओ साई बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा दर्शन करते साई राम के रक्षण करते तुम भक्तन के शिरडी बुलाओ साई बाबा तेरे शिरडी में अमृत की वर्षा साई बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा तीरथ में तीरथ है परति सत्य साई की है पुट परति तीरथ वे तीरथ है परति सत्य साई की है पुट परति हृदया समाओ साई बाबा तेरे परति में भक्ति की वर्षा साईं बाबा तेरे परति में भक्ति के बरसा
करते हैं हम भगवान से भगवान बाबा से हमें परती बुलाओ शिरडी बुलाओ जहां पर भक्ति की वर्षा होती है। हम मंदिरों में जाते हैं मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा या अन्य तीर्थ स्थल पे भी जाते हैं यमुनोत्री गंगोत्री गंगसागर अलाहाबाद हरिद्वार मथुरा काशी रामेश्वरम केदारनाथ बद्रीनाथ पहाड़ की चोटियों पर बसे हुए मंदिर वैष्णो देवी जैसे केदारनाथ बद्रीनाथ हो गए कैलाश पर्वत पशुपतिनाथ नेपाल में हम अलग अलग तीर्थ स्थान पे क्यों जाते हैं क्योंकि वहां पर जाकर हम कुछ जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना वाइब्रेशंस स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस उनको पाना चाहते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जब इंसान संकट में होता है, परेशानी के बादल चारों ओर मंडरा रहे होते हैं, तो वह परमात्मा के द्वार की ओर दौड़ता है। कई ऐसे भी हैं जो नित्य तीर्थ जाते हैं, उनका मानना है ऐसे स्थानों में जाकर मन की शुद्धि होती है। कई ऐसा भी मानते हैं हमारे पाप धुल जाते हैं। हम कहते हैं बाबा हमें परती बुलाओ, हमें शिरडी बुलाओ जहां भक्ति की वर्षा होती है, क्योंकि वहां का वातावरण इस प्रकार का हो जाता है। प्रश्न ये उठता है, हम अनेकों बार तीर्थ करने गए, हमने हजारों बार गंगा में डुबकी लगाई, क्या हमारी मन की शुद्धि हुई? विचार कीजिएगा, एक बोतल में गंदा पानी भरा हुआ है, या यूं कहिए कि एक बोतल में अल्कोहल है, आपने बोतल को कस के बंद कर दिया और गंगा में डाल दिया, बोतल बाहर से तो साफ हो जाएगी लेकिन भीतर तो वही चीज है ना। इसी प्रकार से जब हम नदियों में स्नान करते हैं या मंदिरों में जाकर या तीर्थ स्थल में जाकर अपने मन की शुद्धि का प्रयास करते हैं, क्या हमारी शुद्धि हो जाती है? इसका उत्तर कौन देगा? कोई भी व्यक्ति दूसरे मन की स्थिति को नहीं जान सकता। दूसरे व्यक्ति के मन में कितना मैल है या कितनी पवित्रता है, ये हमें नहीं जानना चाहिए। इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। हम केवल इस बात पे ध्यान दे सकते हैं, हम केवल इस बात का विश्लेषण कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि मेरे भीतर का मैल कितना कम हुआ है। जो आज से 10 साल पहले था, क्या आज वो स्थिति है मेरे मन की? कभी आपने विचार किया, एक 13-14 साल का बालक अपने पुस्तकों को फेंक के कहता है मैं जा रहा हूं, मेरे भक्त मुझे पुकार रहे हैं, मुझे बहुत काम करना है, जाके बैठ जाता है पेड़ के नीचे, भजन गाता है, मनस भजोरे गुरु चरणम दूस्तर भव सागर तरणम, ये भगवान बाबा का पहला भजन था। मनस भजोरे मानस नहीं है, कई लोग सोते हैं मानस करते हैं मनुष्य, यह शब्द है मनस, मनस का अर्थ है मन। हे मन गुरु के चरणों को भज ले, अन्यथा इस भवसागर को पार करना बहुत कठिन है। पहला भजन हमको बता रहे हैं मन की शुद्धि लेके आइए। जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, हमारे कर्म शुद्ध नहीं हो सकते। जरा विचार कीजिएगा, आप एक बच्चे को सुलाने का प्रयास करें, बच्चा रो रहा है, छोटा सा बच्चा है, बेबी रो रहा है, पहले इंसान तो तब भूख लगी होगी, नहीं भूख तो नहीं लगी, इसको खाना खा लिया, इतने दूध पी लिया, फिर हम ही सोचते नहीं इसके कहीं पेट में दर्द हो रहा होगा या तो नींद आ रही होगी, थक गया होगा, सुनाने का प्रयास करते हैं। आप बच्चे के पीठ पर थपके मार रहे हैं, हल्की सी, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरे बच्चे। कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर में बच्चे की मां उसको गोद में लेती है, वो भी थपके मार रही है। वो थपके मारने के साथ साथ दुनिया भर के और काम भी कर रही होगी। बच्चा तनिक भर में सो जाता है। क्या फर्क था? आपने भी थपकी मारी, मां ने भी थपकी मारी, लेकिन मां की थपकी का एहसास बच्चे को जल्दी हो गया। Why is that? ऐसा क्यों? अगर केवल थपकी मारने से बच्चा सो सकता है तो ऐसी मशीन ना बना ले हम लोग। बच्चा लेटा हुआ, मशीन थपकी लेती रहे उसको, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। वो काम नहीं करेगी। माता जब अपने बच्चे को थपकी दे रही है, मां के हृदय से प्रेम उमड़ के जा रहा है। मां का ध्यान बच्चे की ओर है, मां का फोकस बच्चे की ओर है। उसी प्रकार से अगर हम अपने जीवन का फोकस परमात्मा पे लगा दें, ऑटोमेटिकली हमारे मन से प्रेम का फव्वारा फूट उठेगा। सारे तीर्थ में जाने के पश्चात भी अगर मन की शुद्धि नहीं हुई तो क्या फायदा हुआ? मन की शुद्धि के हेतु भगवान बाबा ने पहले भजन में कहा, मनस भजोरे गुरु चरणम, हे मन गुरु के चरणों को भज ले। इसका मतलब ये नहीं है आप कहते हैं गुरु स्वीट गुरु स्वीट गुरु स्वीट मेरे भगवान के चरण ना। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास, या गुरु जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते को पकड़ लेना। गुरु आपको एक दिशा दिखा रहे हैं, आपको डायरेक्शन दे रहे हैं। कहते नहीं है गुरु के होने से आपकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। आपने बहुत सुना होगा ये शब्द, ऐसे गुरु महाराज आने वाले हैं जिनकी जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदल देते हैं। व्हाट इज दिस? इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई आपको डायरेक्शन दे, आपको सही रास्ते पे ले जाए, आपकी दशा अपना बदल जाएगी। इफ यू फॉलो द राइट पाथ द लाइफ विल एब्सोल्युटली डेफिनेटली चेंज। प्रश्न वही है, What is the right path? सही दिशा है क्या? कौन सा गुरु है जो आपको बताएगा कौन से दर्शन में जाने? एक शिव भक्त है, वो आपके बोलेगा शंकर की साधना करो, शंकर से बड़ा कोई गुरु नहीं है, कोई भगवान नहीं है। दूसरा दुर्गा का पुजारी बोलेगा नहीं वैष्णो देवी जाओ, माता दुर्गा का प्रणाम करो। तीसरा बोलेगा नहीं वृंदावन जाओ, भगवान कृष्ण वहां पर हैं। तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? हम क्या बात कर रहे हैं? भमडर में फंस जाएंगे, यहां से वहां दौड़ते रह जाएंगे। यही हम करते हैं तीर्थ स्थानों में जाके। तीर्थ स्थान की महिमा हम खो चुके हैं। हम जब तीर्थ करने जाते हैं, इट्स जस्ट ए आउटिंग, नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दिस। आप जानते हैं, कहा जाता है एक भक्त था, नदी किनारे बैठ के भजन गाया करता था। नदी पहाड़ों से बहती हुई, गंगा नदी की बात कर रहे हैं, पहाड़ों से बहती हुई समतल पर आती है, उस स्थान का नाम है ऋषिकेश। तो पानी की आवाज आएगी, ऑब्वियसली पानी बहेगा, पहाड़ से नीचे गिरेगा, धरातल पे आएगा, समतल में आएगा, प्लेन में आएगा, थोड़ी आवाज तो आएगी। वह बालक वह भक्त परेशान हो गया, उसने कहा नहीं मैं यहां भजन नहीं गा सकता बैठ के, मैं ध्यान लगा सकता, यहां बहुत शोर है नदी के बहने का। कहते हैं गंगा माता वहां प्रकट होके बोले बेटा यहां से मत जाना, तुम अपने भजन गाओ, अपनी तपस्या करो, अपनी साधना करो, मैं आवाज नहीं करूंगी। आज भी कहते हैं ऋषिकेश में गंगा की बहने की वैसी आवाज नहीं आती। ठीक है ना, जो हम तीर्थ में जाते कहते वाओ व्हाट अ वंडरफुल इफेक्ट, इट्स अमेजिंग। गंगा बह रही है, पहाड़ों से बहती है, धरती पे समतल में प्लेन में गिर रही, आवाज नहीं आ रही। लेट अस टेक द फोटो, लेट अस टेक द वीडियो, लेट अस टेक द ऑडियो। लेकिन ये हमें क्या संदेश दे रहा है? एक भक्त की इतनी तीव्र भक्ति थी कि माता गंगा ने वहां प्रकट होकर कह दिया मैं आवाज नहीं करूंगी, तो छोटी बात नहीं है। भक्ति में तीव्रता केवल कभी आ सकती है जब मन के अंदर शुद्धि हो जाए। मन के अंदर शुद्धि आ सकती है जब हम गुरु के चरणों को पकड़ने, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलने लग जाएं। अगर इस सागर को, अगर इस संसार को पार करना है तो परती में जाएं या शिरडी में जाएं नहीं फर्क पड़ता, भगवान सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, ही इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसियंस, ओमनीपोटेंट। ओमनीप्रेजेंट कैसा? सर्वव्यापी। ओमनीपोटेंट करता है सर्वशक्तिमान, ओमनीसियंस का सर्वज्ञानी। नहीं फर्क पड़ता आप पहाड़ की चोटी पे बैठे हैं या गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, नहीं फर्क पड़ता आप कौन से मंदिर में हैं, कौन सी मस्जिद में हैं, फर्क पड़ता है तो हमारे मन की स्थिति के ऊपर। जाते हैं लोग पुट्टाभर्ती, जाते हैं लोग शिरडी, हफ्ता रह के आते हैं, दो हफ्ते, महीना, दो महीने, तीन महीने रह के आते हैं, वहां जाके साधना करने का प्रयास करते हैं, दिस इज वेरी गुड। लेकिन साधना हमें कौन सी करनी है? द माइंड हैज टू स्टेबलाइज। मन की साधना कर रही है, मन को साधना है, जो मन को साधता है वही साधु है। जो मन को डायरेक्शन देता है, स्पिरिचुअल डायरेक्शन, जो मन को परमात्मा की ओर मोड़ता है, जो हर चीज में परमात्मा को देखने का प्रयास करता है, और मन तभी होगा पवित्र जब हमारे आंतरिक शत्रु काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, हम उन पर नियंत्रण पालेंगे। काम क्या है? इच्छाएं, इंटेंस डिजायर। क्रोध क्या है? एंगर। मोह क्या है? अटैचमेंट। लोभ क्या है? ग्रीड। मद क्या है? ईगो। मत्सर है जेलसी या ईर्ष्या। दुनिया की जितनी भी समस्याओं को आप देख रहे हैं वो इटी कैटेगरी में आएंगी, सिक्स इनर एनिमीज, षड शत्रु। शत्रु इसलिए कहा गया कि हमारे भीतर है, उनके बीच में आके उनमें फंस के हम गलत काम कर जाते हैं, हमारे एक्शन हमारे कर्म पवित्र नहीं हो पाते। सारी आध्यात्मिक साधनाएं, सारे धर्म आपको केवल एक जगह लेके जाएंगे कि आप अपने ऊपर काबू पा लें, और इसके लिए जरूरी नहीं है आप दर दर भटकें, तीर्थ करें। उसके लिए जरूरी है सेल्फ एनालिसिस, विश्लेषण करना, अपने आप को पहचानना, अपने अंतर में झांक के अपने आप को देखने का प्रयास करना, अपने आप से वार्तालाप करना, अपनी कमजोरियों को पकड़ना, उनको सुधारना, फिर सही रास्ते पे चलने का प्रयास करना। गिरेंगे, कई बार गिरेंगे हम। बच्चा भी चलना एक दिन में नहीं सीखता, हजार बार गिरता है, बट सी नेवर गिव्स अप। पहले मां की उंगली पकड़कर चलता है, दीवार का पकड़ लेता है, सामान को पकड़ लेता है, फर्नीचर को पकड़ लेता है, धीरे धीरे प्रयास करता है चलने का विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। गिरता है फिर उठ जाता है, फिर गिरता है फिर उठ जाता है। जब चलना सीखता है तो माँ बाप कहते हैं वाओ ही वॉक फोर स्टेप्स टुडे, या चार कदम चला, पांच कदम चला, फिर बोलते हैं पांच मिनट चला, दस मिनट चला। आज आपको पता भी नहीं होगा दिन भर में कितने कदम चलते हैं, आप गिनती नहीं करते हैं, कोई बड़ी बात है नहीं चलना आज आपके लिए। उसी प्रकार से जब आप परमात्मा की ओर चलना शुरू करेंगे, पहले पहले लगेगा मैंने एक घंटा पूजा करी, मैंने भगवान का दो घंटे याद किया, आज मैंने अच्छा काम किया, आज मैंने खराब काम किया, लेकिन एक समय आ जाएगा केवल आपके शरीर से, आपके मन से, आपके वाणी से, आपके कर्मों से केवल सात्विक कर्म होंगे, कुछ नहीं। यू विल फॉरगेट द काउंटिंग इवन, आप गणना करना ही भूल जाएंगे। उसी को कहा गया गोइंग बियॉन्ड द गुणास, गुणों से परे जाना। विचार कीजिएगा, हम कई बार प्रश्न करते हैं, बाबा पुट्टा पर्ची में थे, बाबा शिरडी में थे, अब कब आएंगे, अब कब अवतरित होंगे, कौन से स्थान में होंगे, उनका नाम क्या होगा, प्रेमा स्थाई, अच्छा अच्छा कैसे दिखेंगे, किस साल उनका जन्म होगा, हम वहां जाके बैठ जाएं, उससे कुछ नहीं होने वाला। भगवान बाबा ने जो आपको देना था दे दिया, सारा ज्ञान दे दिया, सारी भक्ति दे दी, सारे रास्ते दिखा दिए। अगर हम समय में प्रयास नहीं करेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। रोजाना बैठ के दो मिनट के लिए सोने से पहले रात को अपने भीतर झांक के अपने आप से बात करके देखिए कि मैं कहां जा रहा हूं भाई। कहते हैं सेल्फ अप्रेजल, सेल्फ ऑडिट। उत्तर मिलेगा आपको, आपके अंदर से ही मिलेगा, लेकिन अपने आप से बात करना नहीं बंद कीजिएगा। ये शुरू में कब से करना है, आसान सी बात है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। साईं राम। योर लैंग्वेज